ओम शांति। बाबा ही संसार है, सच सभी बहने सेवा में। अच्छा रहा कोविड का पीरियड सबके घरों में, दिक्कत तो नहीं हुई? किसी के घर में आया क्या? आपके घर में आया, निकल गया सहज? ठीक है ठीक है। कुछ भी आता है, अपनी स्थिति अगर अच्छी होती है सब निकल जाता है, और अपनी स्थिति बिगड़ी बहुतों के अनुभव हो गए, जो घबरा गए वो वापिस नहीं आए, और जो मजबूत रहे ठीक हो गए, फटाफट ठीक हो गए। उल्टे सीधे सब अनुभव सबको हुए हैं, ब्राह्मणों को भी हुए, और मैं सबका ध्यान एक बात पर खिंचाता हूँ। पिछली बार भी मैंने यहाँ क्लास में कही वो बात, रोज रोज सुनने की है, कि जो कुछ भी होता है संसार में, हमारे साथ भी हो सकता है, जो हमारे हैं उनके साथ भी हो सकता है। अब परिवार तो जुड़े होते हैं ना, एक परिवार के साथ कितने लोग जुड़े होते हैं? 25 तो कम से कम, और भी रिलेशन इधर उधर के। तो कुछ भी होता है उसका इफेक्ट माइंड पर ना आ जाए, क्योंकि आता है, बहुतों के दिमाग पर आ गया सर, अच्छे अच्छे ब्राह्मण घबराहट में आ गए, हुआ औरों को असर इन पे आ गया, ऐसा भी हुआ कई जगह। तो एक दो चीजें याद रखनी हैं, जो हमेशा याद रखनी है, और मैं सबको कहूंगा लिख के कहीं ऐसी जगह रख लें जिस पे नजर जाती रहे दो चार दिन में एक बार भी, कि जो कुछ हो रहा है, जो होगा उसे स्वीकार करना, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है। स्वीकार क्यों करना है? ऐसे झूठ मूठ स्वीकार करें जबरदस्ती, वो तो नहीं होगा ना। स्वीकार इसलिए करना है कि जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके कर्मों का ही परिणाम है, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। स्वीकार करना है अपने अपने घरों में सभी बहने माताएं खुशी का, हल्केपन का, अपनेपन का वातावरण रखें। थोड़ा एक दूसरे को बोलने की जो आदत होती है और डिस्टरबेंस हो जाता है, उससे बचना है, बचाना है, क्योंकि समय अनुसार जल्दी दिमाग पर असर हो रहे हैं, और बहुतों को मानसिक रूप से परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। मैं सारा दिन तो फोन नहीं खोल सकता, ना खोलता, थोड़ा भी खोलें तो दो चार बातें ही आती हैं, पति पत्नियों के झगड़े, मानसिक रोग, भटकती आत्माओं के प्रकोप, इसके अलावा कुछ बचा नहीं। पैसे की गड़बड़ तो बहुत हो रही, जहां तक पैसा पाप करा रहा है लोगों से। तो हमें अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाना है, मजबूत, ये बात याद रखेंगे। ड्रामा के बारे में बाबा ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, उसको अगर हम याद रखें, मैं क्या बोलूं, वंडरफुल स्थिति रहे। मैं आपको एक घटना ही सुना देता हूँ, आप सबके लिए वो नई चीज है, मैंने क्लास में कभी कभी सुनाई है। 74 की बात है, छोटे लाल भाई आए थे, नहीं आए थे, 74 दीदी मनमोहिनी थी, उनको कोई तकलीफ हुई तो खून की उल्टी हो गई, बड़ी भारी होती ना देखने वालों को भी। 4 दिन के बाद अव्यक्त बाबा आए, बाबा बहुत आते थे उन दिनों, तो मधुबन वाले ही थे। बाबा ने पूछा, जो कुछ देखा कैसी स्थिति रही, तो जैसी रही वो तो हम सब समझ सकते हैं। सबने कहा बिल्कुल अच्छा लगा बाबा, दीदी बुजुर्ग भी थी उनको इतनी तकलीफ, बिल्कुल अच्छा लगा। तब बाबा ने जो कुछ कहा था वो भगवान के अलावा तो कुछ कोई कह ही नहीं सकता। और तब से ही मुझे वो बात याद है, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। ये तो बहुत बार कहा बाबा ने, लेकिन अगली जो लाइन है उसे आप सुन के सोचना क्या गहराई है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। सोच लो, अब कोई सोचे दीदी को खून की उल्टी होनी ही चाहिए तो कैसा लगेगा? कहेंगे बड़े निर्दयी लोग हैं, क्रूअल, जरा भी दया नहीं है इनको, क्या बोल रहे हैं। तो ये कुछ ड्रामा की गुह्य राज है कि जो कुछ होगा वही होना है, उसको कोई बदल नहीं सकेगा। ये बातें हमें लिख के रखनी और इन पे ध्यान देते रहना है, क्योंकि घर घर में अब एक समस्या और बढ़ती दिखाई दे रही है। वो गुह्य राज भी बाबा का मैं आपको सुना देता हूँ, डरना नहीं है। हम ये बातें अपनी क्लास में कर सकते हैं, बाहर जो क्लास कराते हैं ना ऑनलाइन, उस पे भी नहीं करते, लोग डर जाते हैं, बंद ही कर देते, नहीं सुनना है। लेकिन मान लो हमें बता दिया जाए कि 5 दिन के बाद बहुत भारी तूफान आबू में आने वाला है, तो हम डरेंगे या तैयारी करेंगे? अच्छा, हाँ, तो डरेंगे या तैयारी करेंगे? फिर डर के कोई आबू छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे ना। लेकिन तैयारी करेंगे हम कि भाई हमारे खिड़की दरवाजे ठीक हो, हम घर में रहें, टाइम पता है तो बाहर न जाएं। तो जिन चीजों की हमें जानकारी है उसके लिए हम अपने को तैयार करें, उसे हम स्वीकार कर पाए। तो बाबा ने 3 बातें कही थी, जिनके अति विकर्मों का खाता होगा ना 3 तरह से चुकतु होगा। फिर एक बार एक और विधि बताई थी, वो मैं सुना देता हूँ। मानसिक रोगों में वृद्धि, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, और ये भटकती आत्माओं का प्रकोप होना, ये तो बहुत बढ़ता जाता है दुनिया में। फिर बताया कि जब विनाश काल समीप होगा तो जल्दी जल्दी मृत्यु और जल्दी जल्दी जन्म होंगे, क्योंकि जन्म और मृत्यु में ही सबसे ज्यादा विकर्म विनाश होते हैं, सजाएं मिलती हैं आत्मा को। ये 4 विधि बताई थी। तो अब मेरे पास बहुतों के कॉन्टेक्ट होते हैं, बच्चे ने जन्म लिया, जन्मते ही बच्चा जन्म लिया घर में खुशी होनी चाहिए, लड़का होता है तो और खुश होते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि मैं उसे देख देख कर रोती ही रहती हूँ कि भगवान तुमने बच्चा भी दिया लेकिन क्या करूँ इसका, मैं ना संभाल सकती ना फेंक सकती, फेंका तो नहीं जा सकता ना। तो ये स्थिति बनती जा रही है और लोग तो बहुत डरा रहे, 3री वेव आ गई तो बच्चों पे आएगी, पर ऐसा नहीं है, इसमें डरने की बात नहीं है। कर्मों का खाता जिसका जैसा होगा वैसा ही उसके साथ होना है। तो हम सब थोड़े से मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे और बाबा में संशय नहीं लाएंगे। मैंने देखा इस कोविड में कईयों को बाबा में संशय हो गया, बाबा ने मेरी माँ को क्यों बुला लिया। अब माँ से बड़ा प्यार रहता है चाहे 80 साल की हो गई हो, क्यों बुला लिया, बाबा ने मदद नहीं की। मैं कितना भी समझाया कि उसको बुलाना ही तो मदद है, नहीं, कैसे है मदद, अरे बेचारी कष्ट पाती है, 70 साल की हो गई, जल्दी ले गया, नया जन्म, तुम यहाँ रो रहे हो, किसी की गोद में खेल रहा होगा, खुशी हो रही, उधर खुशी हो रही होगी, इधर रुदन हो रहा है, देखो कैसा खेल है, एक तरफ रुदन दूसरी तरफ आनंद है जहाँ बच्चे ने जन्म लिया है। तो हम सभी एक तो अपना योग बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा, ये बात पक्की कर दें, स्थिति श्रेष्ठ होगी, तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। बाबा ने क्यों कहा है, बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगा। और अगली लाइन में बोल दी थी, क्योंकि तुम रोज भोग लगाते हो तो बाप भूखा नहीं रहता, तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा। फिर कहा दुनिया को आग लगेगी और बिल्ली के बच्चे, तो ऐसे ही थोड़े कह दिया, सिर्फ माना बहुत सुखी रहेंगे। और ये भी कह दिया मुरलियों में, आपने सुन लिया साकार में, बाबा तुम्हें अंत में बहुत बहलाएगा। सच तो ये है, पता भी नहीं होने देगा कब क्या हो गया। हो सकता है टीवी आदि को बंद करा दे, समाचार ही ना मिले। समाचार मिलने से ज्यादा घबराहट होती है ना लोगों को। तो बहलाएगा, साक्षात्कार कराता रहेगा। और मुझे एक बात बहुत याद रहने लगी, आप भी याद करना, अभी मुरली में आई थी, 7-8 दिन हुए हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। किस किस को करेगा आप में से, भाइयों को करेगा या माताओं को ज्यादा प्यार करता है। देखो आपका कोई बच्चा बहुत कमाता हो, चरित्रवान हो, मीठा बोलता हो, सुख देता हो, कितना प्यार करती है माताएं उसको, करते हैं या नहीं माँ बाप। भगवान के कार्यों को जिसने सफल किया बहुत प्यार करेगा वो। अब वो सोच ले जो विघन डालते हैं, यहाँ नहीं है वो है तो सही ना, विघन डालते हैं वो, सोच ले उनका क्या होगा। तो जो सहयोगी रहे उन्हें बहुत सहयोग मिलेगा, और जिन्होंने दूसरे काम किए उन पर उसकी नजर नहीं रहेगी, मैं यही कहूंगा, वो खुद सब कुछ उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिनको भगवान साथ देगा सब काम सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा में संशय नहीं लाना है। विनाश की गति को, बाबा के कार्य करने की गति को सूक्ष्मता से समझते चलना है। नहीं हम समझते तो संशय लाते हैं, बाबा ने मदद नहीं की। मैं एक और घटना सुना देता हूं आपको, उसका भी किसी को पता नहीं होगा। यहाँ बहुत पहले की बात है, गांधीनगर सेंटर, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहां एक बाप अपनी एक ही कन्या थी, उसको वो 11 साल की थी तब से उसे सेंटर पे रख दिया था, यहीं पढ़ लो। अब वो 13 साल की हुई, वो बहुत सेवा करती थी, उसकी स्थिति बहुत सुंदर थी, सब उसकी महिमा करते थे, योग फर्स्ट क्लास, सेवा में लगी रहती थी, पढ़ाई में भी होशियार। तो दिवाली पे उसका बाप घर ले गया था उसे, अगले दिन आई तो हाईवे था बस सेंटर से थोड़ी दूर, जैसे यहाँ से शांति स्तंभ। अब उन दिनों ये 4 लेन तो नहीं होते थे, एक ही बड़ी रोड, तो जैसे बच्चे होते हैं ना, वो बस से उतरी और सेंटर जाना है, उन्हें ये भी नहीं सोचा बाप है उसके साथ चलूंगी, तो बस के आगे से दौड़ के निकल गई और पीछे से आ रहा था ट्रक फुल स्पीड से। अभी बस खड़ी है तो ट्रक भी फुल स्पीड से था, उसके नीचे आ गई, दो हो गए, हाहाकार एकदम। बस वाले भी रुक गए बेचारे, बस भी खड़ी रही बहुत देर। बाप सेंटर पे भागा गया, मैसेज दिया सवाई। 3 दिन के बाद भोग लगा बाबा को। अब देखो प्रभु की गति, हम क्या सोचते हैं नीचे और वो क्या करता है। भोग लगा तो संदेशी ने कहा, बाबा बहुत स्वीत आत्मा थी, आपने मदद नहीं की। तब सीधा कह देते थे ना बाबा को, होमली, बिल्कुल होमली, हम लोग अव्यक्त बाबा से मिलते थे तो सीधे बाबा के रूम में बैठे, पास पास कुछ भी कह रहे हैं, जैसे परिवार में माँ बाप और बच्चे बैठे हो। तो बाबा ने कहा ये बच्ची बहुत स्वीट थी, बाबा को बहुत प्यार करती थी और बाबा भी इसे बहुत प्यार करते थे, तो बाबा ने इसके प्यार के रिटर्न में इसके लंबे चौड़े विकर्मों को 1 सेकंड में भस्म करा दिया है। 1 सेकंड भी नहीं लगी, वो तो बस भागी और गई, उसको पता ही नहीं चला क्या हो गया। तो देखो प्रभु की गति, नीचे वालों का सोच। अंतर हो गया ना। आत्मा का प्यार था तो कहा उसके जो बहुत विकर्म थे वो एक सेकेंड में समाप्त करा दिए। ये प्यार का रिटर्न है। तो हम कुछ और सोचते हैं, उसकी गति कुछ और है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, संडे को सबने मुरली सुनी, मुझे क्लास तो उसी दिन करानी थी, फ्रेश मुरली मुझे पूरी याद थी, लेकिन मुझे थोड़ी गड़बड़ थी तो आ नहीं सका। कौन सा कदम बताया बाबा का? पहला तो समर्पण था, दूसरा सहनशीलता। और बाबा की सहनशीलता, मुस्कुराते हुए पार किया ना कठिनाइयों को, हनुमान पहाड़ को गेंद की तरह उठा लाया, उदाहरण दिया ना। बड़ी बड़ी समस्याएं बाबा के सामने आई और सब गेंद की तरह जैसे उड़ गई, खत्म हो गई। बहुत सहनशीलता। तो क्या था, क्यों सहनशीलता? बाबा गाली दे रहे थे लोग, सिंध में कहां से आ गया ये, कोई तो कहते थे महाकाल आ गया है, कोई कहते थे कलकत्ते से जादू सीख के आ गया है ये दादा। और बाबा ने कहा ना, जिसने सदा ही सम्मान और प्यार पाया था उसको गाली कलंक। अब एक सम्मानित व्यक्ति को गाली मिलने लगे, सोच लो उसका हाल क्या होता है। जो बुरा हो उसे लोग पहले ही गाली देते हैं, वो तो ठीक है, चलो पहले भी दे रहे थे अब भी दे रहे हैं, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति को गाली दे रहे हो, क्या मन में था बाबा के जो मुस्कुराता था? और लगता नहीं था कि कोई मेरा विरोध हो रहा है और मुझे गाली खानी पड़ रही है, अच्छा से बाबा आया मुझे फंसा दिया बीच में, ये नहीं सोचता। क्या संकल्प रहा होगा? वाह वाह, आपने तो बड़े नशे की बात कह दी, भगवान को गाली दी मुझे दी, तो क्या हुआ? हरियाणा की हो ना, तो भगवान को गाली दी, असर ही नहीं पड़ा उस पर, हमें भी दी तो क्या हुआ? फिर दूसरा रहता है ना, हम एक बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जो भी आता था साक्षात्कार हो रहा है, कोई श्री कृष्ण को देख रहे हैं, जिसकी जिसमें भावना हो उसको देख रहे हैं, कोई स्वर्ग में जा रहे हैं, एक आनंद की लहर थी वहां। और बाबा के पास तो परम आनंद था, तो उसके आगे ये छोटी बातें कुछ नहीं लगती थी। देते रहो गाली, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर आनंद है। बेगरी पास आया, क्या आप समझते हैं बाबा को भरपेट भोजन मिलता होगा? सूख गए थे बाबा भी, हमने देखे वो फोटो, सब दिखाते नहीं अभी, सूख गए थे बिल्कुल। अब बाप था तो पहले बच्चे खाएंगे ना, मैं तो भूखा भी रहूं चल जाएगा, लेकिन चिंता नहीं थी। कहानी सुनी होगी ना एक दिन की, 11 बजे तक पैसा नहीं, खाना खाना है सबको। बाबा ने कहा कि बच्ची थोड़ा इंतजार करो, शिव बाबा के बच्चे हैं, भूखा तो नहीं रखेगा। और फिर आ गया कहीं से पैसा, ज्यादा आया था उन दिनों की दृष्टि में, वो बहुत ज्यादा था, मुझे तो पता हो किसने भेजा था। तो निकल गए बाहर सब, तो शिव बाबा में बहुत बहुत विश्वास। अब आप विश्वास देखो, 11 बजे खाने वाले आपके घर में बच्चे भूखे बैठे हैं और आपके पास कुछ नहीं, कितना निश्चय रहेगा कि बाबा करेगा कुछ? रहता है बाबा तो कुछ नहीं करता, बोलता ही बोलता है बस, यहाँ नीचे हम भूखे। आजकल ये संकल्प आते हैं, हमारा गुरु अच्छा था, संशय हो जाता है फटाफट। लेकिन बाबा थोड़ी परीक्षा भी तो लेता है या नहीं लेता? कितने मजबूत हैं, उसको तो मजबूत आत्माएं चाहिए ना, शेर और शेरनियां चाहिए, बाबा कहते थे शुरू में, कई बाबा कहते थे ना आपके पास थोड़े से ही हैं, बहुत बहुत क्यों नहीं आते, आपका ज्ञान इतना अच्छा। बाबा कहते थे बाबा को भेड़ बकरियों का लश्कर थोड़ा ही चाहिए, शेर शेर नहीं चाहिए, एक ही काफी है, सारे भाग जाएंगे एक कोई देख के। तो बाबा ने सबको बहुत बोल्ड बनाया, ऐसा सहन किया कि किसी को पता नहीं चलने दिया। हम में से कोई सहन करता है तो दो चार जगह बोल जरूर देता है, बहुत सहन करना पड़ रहा है, तुम क्या जानो, तुम मेरी जगह हो तो पता चले बोलते हैं। लेकिन बाबा ने किसी को पता नहीं होने दिया, और ये स्थिति मामा की थी। मामा को भी लास्ट में दो साल अच्छी तकलीफ रही, उन दिनों दवाई भी नहीं थी ना इन चीजों की जो थे उनको, और यज्ञ में इतना पैसा भी नहीं होता था कि कहीं बॉम्बे जाके इलाज कराए रहे। ऐसे सहनशील कि पता नहीं चलने दिया कि उनको कोई कष्ट होता है। मैं भी सोचा करता हूं जो ब्रह्मा वरदाता है, वरदान दे के गरीब को साहूकार बना सकता है, जो जगदम्बा जिसके दर्शन करके ही लोगों के रोग मिट जाते हैं, उनको कितना सहन करना पड़ा। तो जैसे कि सब के कष्ट हर लिए, अपने पर ले लिए और समाप्त कर दिया, तो बाबा की सहनशीलता। एक और बात बाबा ने कही, बाबा के अपने बच्चों की ओर से बाबा को सहन करना पड़ा। कई बाबा से लड़ जाते थे, अब कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि बाबा से कोई लड़ने वाला होगा, थे दो चार लड़ जाते थे, लेकिन बाबा ने सबको मीठे बच्चे कह के प्यार से चलाया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। कईयों के कारण बदनामी भी हुई लेकिन उसको भी सहन किया। तो हमें जीवन में कई चीजें सहन करनी पड़ती हैं। बाबा की मुरली में एक चीज बहुत आती है, उस पर आप ध्यान देंगे जीवन में। बच्चे, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सब कुछ सहन करना है। बड़ी गहरी बात है। हम कोई बहुत अच्छा काम करें फिर भी चार लोग ग्लानी कर सकते हैं। हमें भी कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जो बहुत कष्ट देने लगे, हमें कभी नुकसान हो सकता है। कितना हुआ देखो, कोरोना में बाजार बंद, जो गरीब थे बेचारे, छोटे छोटे काम करते थे, उनके तो काम ही रुक गए ना। आबू में भी सब होटल वोटल बंद। तो सहन करना है, अपने अंदर संकल्प बना दें, मुझे सब कुछ सहन करके आगे बढ़ना है। इस संकल्प में ही बहुत ताकत है। अब देखो, माताएं बैठी हैं, आपकी लड़की की शादी होती है, वहां उसको थोड़ा कष्ट होता है। कोई माता कह देते छोड़ के आ जाओ घर में, नहीं रहना है। माता ऐसी भी, लेकिन फायदा होगा, वो घर में रहेगी क्या आपके पास। कुछ माताएं कहती हैं नहीं बच्ची, सहन कर लो, थोड़ा थोड़ा सहन कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो संकल्प कर ले के मुझे सहन कर लेना है तो जीवन सुखी हो जाएगा, है या नहीं ठीक बात। तो एक संकल्प कर लो, सहन करना है। बाबा ने तो खुल के और बात भी कर दी थी मुरली में, बहने सोचती हैं इसलिए समर्पित थोड़ा ही हुए, हम थोड़ा ही सफाई करें, बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सबने सुना है वो। तो आजकल की पढ़ी लिखी कन्याएं समर्पित नहीं होती, बहुत सहन करना पड़ेगा। विचार करो इस संकल्प पर, बहुत सहन करना पड़ेगा, इससे सहन शक्ति बढ़ेगी या घटेगी। नहीं, गलत बोल दिया, मुझे बहुत सहन करना पड़ेगा इसलिए मैं सेवा में समर्पित नहीं होंगी। शक्ति बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। और आगे चल के यदि उसे ज्यादा सहन करना पड़ जाए, पड़ता है। कन्याएं नौकरी करती हैं, कईयों से मैंने पूछा, मैं कहा जो तुम्हारा ऑफिसर है उसकी सुननी पड़ती है? कहा डांटता है बहुत। फिर मैंने कहा सहन कर लेती हो, क्या करे, नौकरी करनी तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा ब्रह्मा कुमारियां कोई डांटती तो सहन नहीं होता था। वो सोचते हैं ये भी तो सवेरे मुरली सुन रही थी, मैं भी सुनी थी, ये क्यों डांटती है मुझे। संकल्पों का ही तो खेल है ना। हम समझ लें कि मुझे सहन करके चलना है तो हमारी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। माताएं बहनों कुमारों को कईयों को अनुभव होगा, ज्ञान में आए गालियां खाई, माताओं को तो कितना सहन करना पड़ता है, पड़ता है या नहीं, करते हैं ना भाई। भगवान मिला है, बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया, बहुत बड़ी चीज मिल गई जिसकी तलाश थी वो मिल गया, कोई बात नहीं, सहन करेंगे, सहन शक्ति आ जाती है। मैं एक माता का अनुभव सुना, रोहतक की माता, उसने मुझे सुनाया। मैं वहां भट्टी के लिए गया, बहुत पुराना ज्ञान में चलती थी, पति और बड़ा लड़का एंटी थे, लड़की इसके साथ थी। तो पति ने एक दिन सोचा ये मानती नहीं है, लड़कियों का हॉकी लेकर आना, हॉकी का भारी होता है ना, पिटाई करो इसकी। कहा उसने मुझे हर जगह मारा, नाक पे भी मारा, सिर पे, कंधों पे, पैरों पे, हाथों पे, कमर पे। वो लड़की से जब देखा नहीं गया तो उसने कहा कलेक्टर को अभी फोन करती हूँ। तब दोनों भागे, मुझे बता रही थी, देखो वंडरफुल बात, कि मुझे चोट ही नहीं लगी। सोच लो आप, मैं भी उससे पूछने लगा सचमुच चोट नहीं लगी, कहा लगी नहीं, जैसे रुई का डंडा लग रहा हो ऐसा लगता था, नहीं तो कहीं सूज जाएगा, कहीं से खून निकलेगा, दर्द हो, हॉकी की मार तो बड़ी भारी होती है। तो मैं सोचने लगा ये प्रभु की जादूगरी, ये विश्वास की बात, ये निश्चय की बात। तो हम एक मन में तैयार कर ले, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है मुरली में, सवेरे उठ के संकल्प किया करो, मैं सहनशीलता की देवी हूं। बहनों के लिए कहा था क्योंकि बहनों को ज्यादा सहन करना पड़ता है, भाई लोग भी संकल्प करें, मैं सहनशीलता का देवता हूं, सब कुछ सहन करने की शक्ति मेरे पास है। तो शक्ति जागृत हो जाएगी, बीमारी कैसी भी आ जाए वही मुझे सहन करना है। अब रात को कहीं आपको कुछ हो जाए, कोई डॉक्टर नहीं, कोई रिक्शा नहीं आपको कहीं ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं, कुमारों के साथ होता है ये, अकेले हैं वो, सोचते हैं ना सहन कर लेते हैं, सवेरे दिखा लेंगे। तो इस संकल्प से ही दर्द घट जाता है, नींद आ जाती है बहुतों को। कोई बाबा को बुला लेते हैं, उसको याद करते हैं, आप सुप्रीम सर्जन हो, अब मुझे ठीक करो, सवेरे तक सो जाते हैं। तो हम सहन शक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखेंगे। बस ये नहीं हो कि मुझे बहुत सहन करना पड़ रहा, बाबा मैंने क्या पाप कर दिए जो मुझे बहुत सुनना पड़ रहा है। सुनने के लिए भी तैयार, सबसे भारी काम है सुनना, कोई बार बार बोलता रहे। एक का मैंने सुना, उसकी सास मरी तो सब कहते हैं बहू को इसने मारी, और बेचारी रोज सुन सुन के दिमाग पे असर आता है ना, रोज दो चार बार बोलते हैं मेरी माँ तुमने मारी, भला कोई मार सकता है ऐसे किसी को। तो बोल न, हमें ऐसे कड़वे बोल किसी को बोलने हैं, और सुनने के लिए तैयार रहना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। तो हम सहनशील बनकर बाबा को अच्छा प्रूफ देंगे। अब मैं क्लास यही समाप्त करता हूँ, फिर मैं और ठीक हो जाऊंगा दो चार दिन में, फिर आएंगे जल्दी आपके पास। यहाँ क्लास करने का आनंद ही कुछ और है, मुझे भी मजा आता है। ओम शांति।
फूलों सा गिरे हुए को उठाना, ऊंचे लक्ष्य पर चलना,
जो हार करना हारना सीखा हो उस कहते
जिंदगी। दुखों को खुशी में बदले, प्रभु प्रेम में वो मचले,
खुद को राह पे संभाले, कर दे जीवन उजाले,
आसान बना दे मुश्किल को जो जिंदगी, उसे कहते हैं।